ओम शांति। लंदन से प्रकाशित हुई एक किताब है, एक मनोवैज्ञानिक ने वो किताब लिखी है, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अटैचमेंट एंड अटैचमेंट डिसऑर्डर। उस किताब में लेखक ने एक बहुत सुंदर प्रयोग का वर्णन किया है। उसमें दिखाया गया है कि एक चिकित्सकों ने, मनस्विदों ने एक प्रयोग किया 3 चूहों के ऊपर। ये जो 3 चूहे थे, इनको अलग अलग घरों में रखा गया और ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जब भी वो चूहा, एक चूहा अगर कोई बटन दबाता है उस घर का, तो वहां से छेद से खाना आता है बाहर। ऐसे 3 छोटे छोटे घर और 3 छोटे छोटे घरों में 3 चूहे। तो जो पहला घर है और जिसमें पहला चूहा है, वो जब भी बटन दबाता है तो खाना बाहर आता है और वो बहुत आनंदपूर्वक उसको स्वीकार करता है। दूसरा जो चूहा है और उसका जो घर है, वहां पर भी ऐसा ही बटन है। वो चूहा भी बटन को दबाता है, परंतु व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि जब भी बटन दबाएगा, खाना हर बार नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। पहली बार आया तो दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, सातवीं बार आ सकता है, आठवीं बार आ सकता है, दसवीं बार आ सकता है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है बटन का, बटन थोड़ा सा खराब है। तीसरा जो है चूहा, वो जब भी बटन दबाता है खाना आता ही नहीं है, उसकी बड़ी मुसीबत है। तो पहला जो चूहा है पहले घर में, वो बहुत निश्चिंत है क्योंकि जब भी बटन दबाया खाना आया और खाया। दूसरा जो चूहा है वो बार बार बटन दबाते रहता है, उसको ऐसी आदत पड़ गई है क्योंकि कभी आता है कभी नहीं आता है। इसके लिए उसने थोड़ी सी एक अपनी सुविधा के लिए खाना बचाना चालू कर दिया है। जब भी खाना आएगा थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा स्टोर करके रखेगा, क्योंकि कभी तो खाना आता है कभी तो नहीं आता है। तो उसकी एक आदत बन गई कि खाना बचा बचा के रखना है, क्योंकि पता नहीं अगली बार खाना आएगा कि नहीं आएगा। अब तीसरा जो चूहा है और जो तीसरे घर में है और तीसरा जहां पर बटन है, वो बटन जब भी दबाता है तो खाना आता ही नहीं है। तो उसमें एक दूसरी आदत उसको पड़ गई है, वो यहां वहां से खाना जमा करता है। अपने पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो अपने भरण पोषण के लिए, जीविका के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो यहां वहां से खाना जमा करता है और यही उसकी आदत है। फिर भी बीच में बटन दबा के जा जाके देखता है कि इस बार शायद आ जाए, परंतु कभी नहीं आता है। उसके बाद इन तीनों चूहों को नए घर में डाला गया, तो जो नया घर था तीनों के अलग अलग, वो ऐसा था कि वहां जब भी बटन दबाओ खाना तुरंत आ जाता था। तो पहले चूहे का तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी कि उसके पहले घर में भी वैसा ही था, बटन दबाओ खाना बाहर। परंतु दूसरा जो चूहा था, उसकी एक दूसरी आदत पड़ गई थी कि क्या करना, बार बार जाके बटन दबाना, जबकि खाना हर बार आता था। फिर भी उसकी आदत ऐसी पड़ गई कि जब भी जाता था बार बार, एक बार बटन दबाया, कुछ देर के बाद फिर दबाता था, फिर दबाता था और जमा भी करके रखता था, जबकि इस बार खाना हर बार आता है क्योंकि घर ही बदली कर दिया है। तीसरा जो चूहा है, उसकी एक तीसरी आदत पड़ गई थी, कौन सी, यहां वहां से खाना जमा करने की। फिर भी इधर तो बटन दबाता था खाना आता था, फिर भी क्या करता था, यहां वहां से जा जाके खाना जमा करता था। लेखक ने लिखा है यही मनुष्य का भी स्वभाव है, जैसी उसकी लंबे समय से जो अभ्यास होगा, लंबे समय से जो आदत होगी, वही स्वत ही वो करेगा। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, नेचर और नेचुरल। क्या कहा बाबा ने? नेचर और नेचुरल। कमजोरी या अवगुण यदि लंबे समय से है तो क्या हो जाता है? नेचर हो जाता है और नेचुरल हो जाती है। और फिर यदि कोई अवगुण है और यदि कोई कमजोरी है, वो न चाहते हुए भी अपना कार्य करती है। हम नहीं चाहते कि वो कमजोरी हो, परंतु अभ्यास ऐसा हो गया है, बार बार बटन दबाता है चूहा, उसको पता है कि अगली बार यहां तो खाना है, परंतु आदत है, क्या करेगा, जमा भी करता है, पता है मिल रहा है, ढूंढता भी है तीसरा चूहा यहां वहां। क्यों? अटैचमेंट और एक आदत। तो बाबा ने कहा नेचर और नेचुरल। अवगुणों की बात बाबा कर रहे हैं, कमजोरी की बात कर रहे हैं। कमजोरी की और अवगुणों की क्या हो गई? आदत पड़ गई है। इससे पहले कि हम मुरली की शुरुआत करें, अवगुणों के विषय में तीन चीजें हम कहना चाहेंगे। सबसे पहला, यदि कोई सोचे मैं एक अवगुण धारण करूं, यदि कोई सोचे कि मैं कोई एक अवगुण धारण करूं, तो वो अवगुण अकेला नहीं आता है, उसके जो सजातीय बांधव है अवगुण के, वो साथ साथ आते हैं। अकेला कभी एक अवगुण नहीं आता है। उसी तरह यदि कोई ये सोचे मुझे एक गुण पूर्ण रीति से धारण करना है, तो उसके भी जो मित्र संबंधी है बाकी गुण, वो भी साथ साथ आ जाएंगे। सारे गुणों को धारण करने के लिए एक गुण की यदि धारणा हो जाए और वो इतनी गहरी हो जाए, तो उसके पीछे पीछे सारे गुण आ जाए। जैसे अवगुण का बताया, अवगुण अकेला नहीं आता है कभी भी, उसके जो फ्रेंड्स है किसके? अवगुण के, वो सब सब साथ साथ आते हैं। एक अवगुण में सारे अवगुण समा जाते हैं, उसी तरह एक गुण में भी सारे गुण समा जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी, हरेक को ये खोजना है, हरेक को ये ढूंढना है, मेरे जीवन में मेरा ऐसा कौन सा सबसे गहरा अवगुण है, मेरे जीवन में ऐसा वो कौन सा गहरा कड़ा संस्कार है जो सब कुछ करने के बाद भी अब तक भी साथ साथ चल रहा है। उस एक अवगुण की तलाश, उस एक अवगुण, कमजोरी, वीकनेस, फ्लॉ, इम्परफेक्शन, खामी, खाद, एलॉय की खोज, उसका अन्वेषण। हो सकता है बाहर बहुत सारे जो अवगुण है जिन पर हम काम कर रहे हैं, वो केवल टाल टालिया है, बीज जो उसका है वो कोई और है, और जो बहुत गहरे बैठा हुआ है, जो बहुत गहरे बैठा हुआ भी है, उसका बीज कहीं बचपन में होगा जो कि अब तक भी चल रहा है, और वो एक ही है। उसकी खोज, उसकी तलाश, उसका अन्वेषण, वो हर एक को करना है। और तीसरी बात अवगुणों के विषय में, जो अवगुण हमें दूसरों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जो अवगुण हमें दूसरों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, शायद वो ही हमारे अंदर है। जब भी किसी को देखते हैं तो उसका वो अवगुण एकदम सामने दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे ही उस व्यक्ति को देखते हैं, एकदम भावना बदलती है, शायद वो अवगुण हमारे ही अंदर है और वो इतना गहराई से है, हम देख रहे हैं दूसरा कितना अहंकारी है। इतना अहंकार भी नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। हम क्या कह रहे हैं? दूसरे के विषय में कह रहे हैं, परंतु क्या ये हमारा अपना ही अहंकार नहीं है जो बाहर जिसका केवल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि बाहर से सुनाई दे रही है? हो सकता है ये हमारा ही आंतरिक अहंकार है और ये हम कभी नहीं मानते, ये हमें कभी भी स्वीकार नहीं है कि ये मेरा भी है। तो तीन बातें ये अवगुणों के विषय में सबको याद रखनी है। पहली कौन सी बात बताई? अपना कोई एक गहरा अवगुण, संस्कार, स्वभाव, उसकी खोज, जो कि सबसे बड़ी बाधा है, शायद वही एकमात्र बाधा है। दूसरी कौन सी पॉइंट बताई? एक गुण को धारण करो तो उसके साथ सब कुछ आ जाएंगे, और उसी तरह यदि एक अवगुण को धारण करो तो उसके साथ सारे अवगुण आ जाएंगे। किसी अदालत में एक व्यक्ति खड़ा था कटघरे में और जज साहब उससे पूछ रहे थे कि क्या ये चोरी तुमने की है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। वो कहता है बिल्कुल नहीं। उससे पूछते हैं क्या ये दूसरे व्यक्ति को धोखा तुमने दिया है? वो कहता है बिल्कुल नहीं। उससे पूछा जाता है क्या ये व्यभिचार का कार्य तुमने किया है? वो कहते कदापि नहीं। उसको पूछा जाता है क्या ये अवगुण तुम में है? वो कहता है कभी नहीं, कभी था ही नहीं आज तक बचपन से। जज साहब उससे पूछते तुमने आज तक जीवन में कोई भूल की? बोलते आज तक कभी नहीं की। कोई एक तो तुम में कमजोरी होगी वो तो बताओ। बोलता कोई कमजोरी है ही नहीं, हाँ बस एक ही चीज है, मैं केवल झूठ ही बोलता हूं, दूसरा और कोई कमजोरी मुझ में है ही नहीं, एक ही है बस। अगर आप इसको कमजोरी समझे तो, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। तो मी नवेत्स, तो एक अवगुण अपने साथ सारे अवगुणों को लाता है। यदि किसी को अवगुण साधने हैं तो सारे को साधने की आवश्यकता नहीं है, एक ही साध लो तो सारे सद जाएंगे। तीसरी बात बताइए अवगुणों के विषय में। जो अवगुण हमें दूसरों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, शायद संभवता पॉसिबली हमारे ही अंदर है, वो हमारे ही अंदर की प्रतिध्वनि है, वो प्रतिछाया है। तो बाबा ने यहां कहा नेचर और नेचुरल, किनको बनाओ? तीन चीजों को। कौन कौन सी? याद, गुण और शक्ति। याद स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इन तीन चीजों को क्या कर दो? नेचुरल और नेचर बना दो। ऐसे नहीं कि बाबा के कमरे में जब बैठे तभी याद कर रहे। मेडिटेशन जो है वो डूइंग नहीं है, बीइंग है। करने की कोई क्रिया नहीं है जैसे बाकी क्रियाएं कर रहे, अभी योग हो गया अभी चलो दूसरा काम करते हैं, कोई क्रिया नहीं है। बीइंग है, अस्तित्व है, स्वरूप है। याद स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये तीनों चीजें जब होगी तब क्या होगा? बाप समान। तो आज दो मुरलियां हैं, दोनों अलग अलग चालू करनी है या इधर से उधर और उधर से उधर, क्या करें? पंछी की तरह एक डाली से दूसरी डाली की तरफ, कि पहले पूरा एक पूरा करे और दूसरी पहले एक? अच्छा ठीक है। तो बाबा पहली मुरली में 3 तारीख 83 का वर्ष जनवरी मास अव्यक्त मास चालू है, मधुबन का प्रांगण, स्वीट होम कहा मधुबन को, वरदानी भूमि कहा मधुबन को, अब्बा का घर कहा मधुबन को, लाइट हाउस कहा मधुबन को, और जागृति का केंद्र, क्या कहा, जागृति का यह केंद्र है, ऐसे पांच नाम दिए हैं बाबा ने। तो पहली मुरली है 3 तारीख की, जनवरी मास 1983। क्या देख रहे हैं बाप दादा, क्या देख रहे हैं, डबल विदेशियों को देख रहे हैं, और देख देख के क्या आ रहे हैं, और देख देख के क्या कर रहे हैं, देख देख के क्या हो रहा है उसको, देख देख के खुश हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपने स्वीट होम में पहुंच गए, क्योंकि वरदानी भूमि में पहुंच गए, क्योंकि ऐसी भूमि में पहुंच गए जहां सर्व प्राप्तियों का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी भूमि पर आ जाना, इसको देखकर ही बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। उनकी 3 विशेषताएं बाबा ने गिनाई हैं। पहली, रहते कहां हैं, दूर, दूर वाले समीप, और समीप वाले दूर, समीप वाले दूर, समीप वाले अगर ऐसा कह दे तो फिर बाबा क्या कहेगा, समीप वाले दूर हो गए और समीप, आह कितना अच्छा उत्तर है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। तो दूर वाले समीप आ गए, और समीप वाले और समीप और समीप। 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद 13 संदेश आए थे। 13 संदेश में से छठवां संदेश गुलजार दादी के द्वारा, जिसमें बाबा ने इमर्ज किया था एक नदी को, सबको पता हो गया यह संदेश, एक नदी बह रही है, वहां पर समीप रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और कुछ कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, जो दूर से आ रहे हैं वो प्यासे हैं, वो समीप वालों से पूछ रहे नदी कहां है, नदी समीप वाले बता रहे यहां है, परंतु उनको कुछ महत्व नहीं है उस नदी का। वो समीप वाले हैं आबू निवासी, और दूर वाले हैं बाबा के आने वाले दूर दूर से बच्चे, और थोड़े ही समय में वो नदी ने अपनी दिशा पलटी। कोई तो थे जिन्होंने नहाया और पानी भर के रखा, परंतु जो समीप वाले थे जिनको इतना महत्व नहीं था, जो नजदीक वाले थे वो प्यासे के प्यासे ही रह गए। यह व्यक्त संदेश है छठवा 69 का। तो जो समीप है ऐसा ना हो जाए कि वो प्यासे रह जाए, और जो दूर वाले हैं उन्होंने पहचान लिया, दूर वाले आ गए। वहां पर और एक सीन है उसी संदेश में, पहला सीन, ये दूसरा था। पहला सीन है कि बहुत बड़ा एक विशाल गेट है, और बहुत भीड़ लगी है, टिकट बट रही है, कईयों को टिकट मिल गई है, और जिनको टिकट मिली है वो उस गेट में प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ कुछ है जो केवल पश्चाताप कर रहे, जो केवल देख रहे। उस द्वार पर लिखा है स्वर्ग का गेट, स्वर्ग का द्वार। तो डबल विदेशियों से मुलाकात, क्या कह रहे बाबा उनको, दूर रहते हो परंतु समीप आ गए, वहां से ढूंढ लिया, वहां से पहचान लिया, और नशा भी कितना है उनको। अभी आएंगे डबल विदेशी कुछ दिनों के बाद। एक एक की जीवन कहानी कितनी प्रेरणादायी है, किस कल्चर में, किस धर्म में, किस संस्कृति में, किस भाषा में, किस देश में, किस स्थान में जन्म लिया, उस संस्कृति में विलासिता में डूबा हुआ जहां पर समाज है, धन की दौड़ है, उस समाज में जन्म लेकर भगवान को पहचान लिया, कितनी महानता है। धर्म की दीवार पर्दे को तोड़कर यहां आ गए, उस दीवार को क्रॉस कर, ये उनकी महानता है। तो बाबा कह रहे हैं दूर वाले समीप आ गए, भगवान को जान लिया। पाश्चात्य जगत में, क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में एक बहुत बड़े कवि संत हुए थे टर्टलियन। टर्टलियन ने अपने शिष्यों से एक बार कहा था, कि भगवान को देखे बिना, भगवान के दर्शन हुए बिना अविश्वासी रहता है। दूसरा वक्तव्य दिया था, भगवान का दर्शन हो जाए उसके बाद भी अविश्वास रहता है। तो शिष्यों ने पूछा, पहली बात तो ठीक है कि भगवान जब तक दिखाई नहीं दे, भगवान का जब तक दर्शन ना हो तब तक अविश्वास रहता है, परंतु ये जो दूसरी बात आपने कह दी कि भगवान का दर्शन हो जाए उसके बाद भी अविश्वास रहता है, वो क्या है? तो उन्होंने कहा, जब तक भगवान नहीं दिखाई दे, भगवान नहीं मिलता है, तब तक तो अविश्वास रहता ही रहता है, परंतु जब दिखाई दे तब एक दूसरे प्रकार का अद्भुत अविश्वास जागता है, वो ये कि वो इतना बड़ा परमात्मा और मुझे मिल गया, क्या ये सत्य है? क्या ये मैं नींद में तो नहीं हूं? क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? वो परमात्मा, वो जगत नियंता, वो सृष्टि का मालिक, वो संसार का रचयिता, उसको मैंने पा लिया, क्या ये कोई स्वप्न तो नहीं? क्या उसके मुझे दर्शन हो गए? कहीं मैं नींद में तो नहीं? कहीं ये मूर्छा तो नहीं? कहीं बेहोशी तो नहीं? इसलिए अविश्वास। तो विदेशियों की तीन विशेषताएं बाबा ने देखी। पहली विशेषता देखी कि दूर रहते हुए भी इस भारत भूमि में आए हुए, साधारण तन में आए हुए, अवजानंती माम मुड़ा, गीता में कहा है मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं, अर्जुन मुझे वो जानते नहीं है, ऐसे आए हुए गुप्त वेश में आए हुए भगवान को जान लिया। दूर वाले समीप और समीप वाले और समीप, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, दूसरी कौन सी विशेषता है? दूसरी विशेषता है चतुराई, दूसरी विशेषता है भाग्य, दूसरी विशेषता है त्याग। क्या छोड़ा और क्या पाया? यदि कोई व्यक्ति है जिसके घर में एक साल से इतना कूड़ा करकट है, इतनी गंदगी है, और एक दिन अपने घर की सफाई करता है और सारा कूड़ा करकट बाहर निकालता है, तो क्या उसका सत्कार होता है क्या समाज में? बहुत बड़ा काम कर दिया। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, ये क्या है? तुम्हारी चतुराई है। क्या किया तुमने? क्या छोड़ा और क्या पाया? छोड़ा भी कब? जब देखा इतना बड़ा मिल रहा है भाग्य, तभी तो छोड़ा, वैसे थोड़ी ना छोड़ा। एक तरफ तो बाबा महिमा भी कर रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ कह रहे तुम चतुर भी बहुत हो। ये तुम्हारे क्या हो? तुम पक्के सौदागर हो, पक्के व्यापारी हो, ये तुम्हारी चतुराई है। पहले भाग्य समझा क्या है और फिर छोड़ा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे छोटे बच्चे को दो लड्डू दिए जाए, एक छोटा एक बड़ा, कौन सा लेगा? बड़ा। तो क्या ये कहेंगे कि इसने छोटे का त्याग कर दिया? तुमको जो था, तुम्हारे पास जो था, वो कितना शूद्र था, वो कितना निम्न था, वो नीच था, और तुमने श्रेष्ठ को, विराट को, उस अथाह संपदा को प्राप्त कर लिया, वो ले लिया जो कि किसी को न मिला। तो ये क्या किया? बाबा ने यहां दो उदाहरण दिए हैं, एक नींद का और दूसरा खान पान का। पहले क्या करते थे? बाहर का, अच्छा पहले अमृत वेले का पॉइंट, पहले क्या करते थे? आराम से नींद में सोते थे, परंतु जब देखा कि यहां पर अलौकिक अनुभव हो रहे हैं अमृत वेला, तो उसके सामने वो नींद क्या है? तो ये भी कोई छोड़ना हुआ, ये तो भाग्य को पाना हुआ। अतिंद्रिय सुख मिल गया है, इंद्रिय सुख छूट गया है। क्या छोड़ा क्या पाया, इसके ऊपर लिखो, ऐसा बाबा ने होमवर्क दिया है। किस किस ने किया ये होमवर्क आज? अरे वाह, माता जी ने किया है। और भी है, और बाबा ने काम दिया है आज सुबह की मुरली में, क्या छोड़ा और क्या पाया। एक भाई ने हमें 160 पॉइंट्स की लिस्ट भेजी है, 160, क्या छोड़ा और क्या पाया। सबको करना है काम, नहीं तो खाली कनरस है। मुरली सुन ली, बहुत अच्छी थी, आहा हा, बहुत अच्छा लगा, लिख भी लिए सारी पॉइंट्स, पर होमवर्क तो किया ही नहीं। कल की साकार मुरली, दिन रात बत्तियां जगाकर लिख लो मुरली की पॉइंट को, कल वाली, दिन रात बत्तियां जगाकर मर झुरकर मरना है और झुरना, झुरना हिंदी एक शब्द है, झुरना अर्थात बहुत ही व्याकुल होना, विकल होना, अस्वस्थ होना, मुरझाना, यह भी उसका एक अर्थ है। मर झुरकर, खाना न खाकर भी इस पढ़ाई में एकदम लग जाओ। सुनी ना कल की साकार मुरली, दिन रात बत्तियां जगाकर, मर झुरकर, खाना न खाकर भी इस पढ़ाई में लग जाओ। वाह, हमको 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा महावाक्य, तो मुरली से अच्छी तो थी, परंतु होमवर्क यदि नहीं किया तो क्या कहेंगे, क्या छोड़ा और क्या पाया। होमवर्क है मुरली से, इसको निकालना है। सबको जिन्होंने किया नहीं है वो लिखना चालू कर दे, होमवर्क को लिखो, करना बाद में। दूसरी पॉइंट थी, एक तो अमृत वेले के विषय में, दूसरी थी भोजन के विषय में। क्या कहा भोजन के लिए, वो भोजन छोड़ दिया तो क्या हो गया, बीमारियां छूट गई, छूट गई, हेल्थ और वेल्थ सब मिल गया। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, कौन कौन है उनको उधर के भोजन की याद आती है कोई, शायद ही कोई होगा ब्राह्मण समाज परिवार में। इस तरह के नियम दूसरे धर्मों में भी बहुत थे, परंतु इतने वो उसका पालन नहीं कर पाए। एक सबसे बड़ा उदाहरण यहां पर बौद्ध धर्म का है। महात्मा बुद्ध जब आए तो सबसे अधिक बल उन्होंने हिंसा, अहिंसा, हिंसा के विरोध में बोला और अहिंसा का समर्थन किया। आज, आज के युग में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार जापान, चीन, बर्मा और उस देशों में है, परंतु सबसे ज्यादा हिंसक खाते क्या है वो लोग बताए ना, ये कैसे हो गया, जबकि महात्मा बुद्ध ने तो ये बताया नहीं था। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि तुम्हें तो अहिंसा ही सर्वोपरि है, परम धर्म है, उससे परे और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक और नियम था उनके भिक्षुओं का कि जो भी पात्र में मिल जाए, वो जो भी भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे अनासक्त भाव से स्वीकार कर लेना है। एक बार ऐसे हुआ कि उनका एक भिक्षु कहीं गया भिक्षा मांगने के लिए और अचानक उसकी थाली में ऊपर से एक मांस का टुकड़ा मिल गया, पड़ गया। अब उसके सामने धर्म संकट खड़ा हुआ, अब क्या करूं, एक तो है कि हिंसा करनी नहीं है, मांसाहार करना नहीं है, परंतु अब ये टुकड़ा पड़ गया इसमें, इसका क्या किया जाए। यदि मैं इसे अस्वीकार करता हूं तो यह भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो भी मिले, चाहे मिठाई मिल जाए, चाहे सूखा सूखा मिल जाए, साग सब्जी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्या किया जाए। तो वो महात्मा बुद्ध के पास गया वो भिक्षु, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, दो पर्याय थे, अगर ये कहते, महात्मा बुद्ध ने सोचा अगर मैं इसको ये कहता हूं कि जो तुम्हें मिला है वो छोड़ दो, ये अच्छी चीज नहीं है, इसको फेंक दो, तो हो सकता है मेरे जाने के बाद ये इतना बड़ा लाखों भिक्षुओं का जो संघ है उसका ऐसा होगा कि एक अवज्ञा इसने की तो बाकी सारे भिक्षु भी अवज्ञा करने लगेंगे। और ऐसी घटना तो बार बार होती नहीं है कि आकाश से कहीं से मांस का टुकड़ा गिर जाए। एक तो यह था उनके पास, दूसरा था उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि इससे एक चीज रहेगी कि ऐसी घटना क्योंकि बार बार नहीं होती, एक तो रहेगी कि नियम और मर्यादाएं बनी रहेगी। तो उसके बाद जो दूसरे भिक्षु थे, कभी किसी घर में गए और उन्हें मांस मिल गया और बार बार मांस मिलते गया, फिर क्योंकि उनको भी पता चल गया गृहस्थों को कि ये लोग खाते हैं, किस तरह बौद्ध धर्म मांसाहारी हो गया, ये बहुत बड़ी कहानी है। नहीं तो वो तो उसके विरोध में है। आप जैसे भारत में ऐसा लिखा रहता है दरवाजों दुकानों पर, यहां शुद्ध देसी घी मिलेगा, उधर के दरवाजों पर लिखा रहता है यहां पर मरा हुआ जो प्राणी है, मारा नहीं, पहले से मरा हुआ है, मारना हिंसा है पर ये तो पहले से मरा है, क्योंकि गृहस्थी लोग बुद्ध भिक्षुओं को वही देने लगे कि जिनको पहले से ही मर चुका है, उसमें तो कोई पाप नहीं है खाने में, क्योंकि मारा नहीं है, हिंसा थोड़ी की है, पहले से मरा था उसका है, तो ये एक सूक्ष्म बात है। तो बाबा कह रहे हैं इस तरह इतना प्रचलन है, उधर के देशों में जाओ तो ये सारी चीजें क्या क्या खाते है पता नहीं वो लोग, और यहीं पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म है। तो बाबा ने क्या कहा, तुमने क्या कर दिया, ये क्या तुम्हारा बीमारी से छूट गए, शुद्ध भोजन तुमको मिल गया, ब्रह्म भोजन का भाग्य है। 86 की मुरली है, दुख भंजक ये भोजन है। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन क्या है, दुखों को दूर करने वाला, दुखों का नाश करने वाला ये भोजन है। तो ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या कही, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली है, वो हो गया, वो हो चुका है। तीसरी विशेषता कौन सी है, वो हो गया ना, वो हो गया भाग्य, सोना छोड़ा सोना बन गए, ये हो गया। तीसरी विशेषता, जो काम करते हैं वो बड़ी लगन से करते हैं, फास्ट करते हैं, जो चीज दी जाए उसमें पूरी जी जान लगा देते हैं, परंतु यदि कोई रुकावट आ जाए माया की तो क्या होते हैं, घबरा भी जाते हैं, नाजुक भी बन जाते हैं, परंतु हाँ फिर उसको पार भी कर जाते हैं। महावीर भी है, जैसे तुम खेल करते हो उस खेल में दिखाते हो कि माया को किन साधनों से भगा दिया, उसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी महावीर। आगे बाबा ने कहा है ना, इस महातीर्थ की प्रत्यक्षा, तीर्थंकरों द्वारा महातीर्थ की प्रत्यक्षता। हम कौन है, तीर्थंकर है एक रीति से। तो बाबा कहते हैं महावीर, तुम महावीर हो। वहां पर मोहब्बत और मेहनत की भी बात कही है, मोहब्बत से करते हो या मेहनत से करते हो, याद स्वरूप रहना इसके लिए मेहनत लगती है या हो ही स्वरूप है उसका। और फिर वहां पर वो तीन बातें जो शुरुआत में हमने कही, याद स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो एक तरफ है मेहनत और दूसरी तरफ है मोहब्बत। मोहब्बत में रहे तो सब कुछ स्वतः स्वतः होने लगता है, केवल उसके प्यार को हृदय में बढ़ाना है। तो उसके जो प्यार की जो लगन है, जो अगन है, वो सब कुछ कराएगी, अपने आप सारी धारणाएं स्वतः हो जाएगी, सारे गुण धारण स्वतः हो जाएंगे, सब कुछ स्वतः ही। नहीं तो दूसरी तरफ मेहनत है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसके पास में एक दूसरा भिखारी आता है, तो वो जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसको बहुत डांटता है, पहले तो डांट पिलाता है, उसको कहता है कि तुम इतने अच्छे हो, तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम्हारे जैसे तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि तुम भीख मांगते रहते हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने तो बहुत मेहनत करनी चाहिए और कमाना चाहिए। तो वो भिखारी उस धार्मिक व्यक्ति से पूछता है कि आपने कभी भीख मांगी है, वो कहता है नहीं मांगी। तो कहता है भीख मांगने जैसी मेहनत और कोई दूसरे काम में है ही नहीं, जितनी मेहनत भीख मांगने में है उतनी और किसी बात में नहीं, कितना भी भीख मांगो मिलती कहां है आजकल, सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी बात में है, कितना भी मांगो गाली भी सुननी पड़ती है, भीख मांगते रहो भीख मांगते रहो। इच्छा अर्थात भीख मांगना, तृष्णा अर्थात भीख मांगना, वासना अर्थात भीख मांगना, वासना युक्त मन अर्थात एक भीख मंगे व्यक्ति की स्थिति है। कितना भी मांगो मांगो मांगो, प्रेम दो, स्नेह दो, केयर दो, अटेंशन दो, ध्यान दो, जो भिकमंगा व्यक्ति होता है, तृष्णा से भरा हुआ, इच्छाओं से भरा हुआ, वो मांगते ही रहता है, और कितना भी मांगो मिलता कहां है, मेहनत बहुत है प्राप्ति बहुत कम। तो यहां ये तीसरी बात। उसके बाद में बाबा ने थोड़ी दो युगों की बात की, कहां जाना है, चंद्रवंश या सूर्यवंश, और उसके बाद में पुकार, आत्माओं की पुकार, क्या कह रही है संसार की आत्माएं, पुकार सुनाई देती है क्या अमृत वेला, कि हमारे अंदर इतनी सारी आवाजें हैं अपनी कि दूसरों की पुकार कहां से सुनाई देगी, हमारे अंदर ही अपनी ही कंप्लेंट्स चालू है बाबा के सामने, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है। बाबा कह रहे हैं भक्तों की पुकार सुनो, आत्माओं की पुकार सुनो, वो तुम्हें पुकार रहे, क्या कह रहे हैं तुमको, आओ, हमको जगाओ। देखो कितनी अच्छी पुकार है उनकी, आओ हमको जगाओ और साथ ले जाओ हे इष्ट देव, हे देवात्मा, हे पैगंबर, हे मैसेंजर। ये सब पुकार है आत्माओं की। यदि हम अपने ही एक साकार मुरली थी, बहुत समय पहले आई थी, जिसमें बाबा ने कहा था हर मनुष्य अपने ही दुख दर्द में खोया हुआ है। एक साकार मुरली में ये वाक्य था कि हर मनुष्य अपने ही दुख दर्द में खोया हुआ है। यदि हम भगवान के बन गए और यदि हमने भगवान को पा लिया और फिर भी हम अपने ही दुख दर्द में खोए हुए हैं, तो संसार की आत्माओं की हम क्या सेवा कर पाएंगे। आबू अब्बा के घर से प्रत्यक्षता की किरणें निकलेगी, लाइट हाउस बनेगा ये, यहां से जागृति का ये केंद्र बनेगा, सारे विश्व में अंधकार जो है उसको हटाने वाला प्रकाश इस केंद्र से निकलेगा। और हम सब कौन है, एक सोमान दिया यहां पर बाबा ने, हम सब कौन है, सबका एक ही संकल्प होना चाहिए तो हम सब कौन है, और तभी सफलता होगी। तो हम सब कौन है, इस अभेद किले के हम सब कौन है, एक एक इकाई ईंट है, हम कौन है, ईंट है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये समझना। विश्व कल्याण मेरी जिम्मेवारी है, संसार की आत्माओं तक संदेश पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है, संसार की आत्माओं के दुख दर्द और अशांति को दूर करना मेरी जिम्मेवारी। यदि हम अपने ही हद के परिवार में, हद के समाज में, हद के स्थान में, राज्य में या देश में फंसे हैं केवल, तो हम वो सेवा नहीं कर सकते जिसके लिए हम आए हैं। ये अभेद किला है और इसकी हम ईंटें हैं। एक भी यदि ईंट कमजोर हो तो सारा किला, यदि दूसरा भी कमजोर है तो उसे हमें उसको भी उठाना है, बजाय इसके कि उसकी हम ग्लानि करें, उसकी हम निंदा करें, उसका परचिंतन करें, उसके अवगुणों की सब जगह चर्चा करें और फैलाएं। हम यज्ञ को कमजोर कर रहे हैं, ये यज्ञ किला है, ये परिवार किला है, एक एक व्यक्ति, एक एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक यहां आई हुई आत्मा प्रभु परिवार की भांति है और ईंट है, एक भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई कमजोर है तो हमें क्या करना है, उसे सशक्त करना है, उसे शक्तिशाली बनाना है, उसे भट्टी में बिठाना है। वो तभी हो सकेगा जब हम स्वयं भट्टी में बैठे हैं, निरंतर, चार दिन, पांच दिन, दस दिन वाली भट्टी नहीं, 21 दिन वाली नहीं, निरंतर सतत ऐसी परिपक्व अवस्था आत्मा की हो। एक परिपक्व आत्मा ही दूसरी आत्मा को सशक्त शक्तिशाली बना सकती है और यही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। जो गिर रहा है, जो पुरुषार्थ में गिर रहा है, जिसका पुरुषार्थ कम हो गया है, जिसका अमृत वेला नहीं हो रहा है और मुरली का चिंतन रुक गया है, ऐसी बाधा जिसके जीवन में आ गई, यदि हम ऐसी आत्मा को ऊपर उठा दें, यदि ऐसी आत्मा के प्राणों में नव चेतना का संचार कर दे, तो वो वास्तव में हम यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तो एक एक हम कौन है, ईंट है। तो सबके लिए होमवर्क, यदि मैं इस यज्ञ की ईंट हूं तो मेरी जिम्मेवारी क्या है, कल के लिए लिखना है। जो लिख सके वो लिखे, जो चिंतन कर सकते हैं वो चिंतन करें। तो यहां पर पहली मुरली पूरी होती है। अब चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। 6 तारीख जनवरी मास 1983 मधुबन डबल विदेशियों से मुलाकात। कौन किससे मिलने आया है, कौन किससे मिलने आया है, सेकंड मुरली, सभी ने मुरली सुनी है, जल्दी बताओ नहीं तो हम नाम से पुकारेंगे। नाम तो पता है ना। कौन आया है, बागवान आया है। यदि सोचो हमारा कोई बगीचा है, हमारा अपना पर्सनल, ठीक है, हमने वहां दो तीन माली रख दिए और एक साल के बाद जा रहे बगीचे को देखने के लिए, एक साल गए ही नहीं, और बगीचे में जाते ही देखा कि बगीचा इतना सुंदर हो गया है, खुशबू ही खुशबू वातावरण में आ रही है, रंग बिरंगी फूल है, तरह तरह के भांति भांति के फूल है, और इतनी सुंदर सजावट है, सुगंध है, रंग है, रूप है, तो हमारी कैसी स्थिति हो जाएगी? बगीचे को देख के हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा, एकदम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वैसे बागवान का भी दिल कैसे हो गया है? गार्डन गार्डन हो गया है एकदम। तो आज बाप दादा अपने खुशबूदार फूलों को देखने आए हैं, देखकर हर्षित हो रहे हैं। एक एक फूल कितना खुशबूदार है, एक एक फूल एक दो से श्रेष्ठ है और प्रिय है। उनकी रंग, उनका रंग, उनकी रंगत कितनी अच्छी है, कितनी उसको खुशी हो रही होगी। और वो क्या कहता है, लास्ट पंक्ति में भी, लास्ट रो में जो फूल है वो भी उसको बहुत प्रिय है, क्योंकि क्या विशेषता है उसमें, दिल से बाप को, बाप को पहचाना और दिल से मेरा बाबा कहा, बस ये एक ही विशेषता है। रूहानी मेरापन और रूहानी ममता, ये दो शब्द मुरली में आए हैं। चाहे कैसा भी हो, परंतु उसने कहा तो सही मेरा बाबा। जिस भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, महात्मा, शंकराचार्य, इमाम, तीर्थंकर, पैगंबर, पयंबर, मैसेंजर, अवतार, इनकार्नेशंस, बोधिसत्व नहीं ढूंढ पाए, समझ पाए, जान पाए, इन्होंने पा लिया। इसलिए बाबा कहते ये मेरे विशेष बच्चे हैं। बाबा कहते बाप रहम का सागर है, बाबा कहते बाप की रहम की दृष्टि है, स्नेह की दृष्टि है इन सभी आत्माओं के प्रति। चाहे मायाजित बनने में कमजोर है, मायाजित बना नहीं है, पुरुषार्थ भी कोई नहीं है खास, माया के प्रभाव में, परंतु मुझे जाना तो सही, यही उसकी विशेषता, यही उसकी महानता, यही। और बाबा कहते हैं, बाबा क्या करते हैं, रिटर्न में पदम गुना देते हैं, और क्या करते हैं बाबा, यहां पर शब्द सेकेंडरी है, सेकेंड नंबर पे वाणी और शब्द। स्नेह का संकल्प ही शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अनुभव कराता है। यहां मौन की भाषा की बाबा बात कर रहे हैं। बाबा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरदान देने की भी जरूरत नहीं है, खजानों से आत्मा स्वतः ही भरपूर हो जाती है। मौन है, और मौन का जो संकल्प है, स्नेह का जो संकल्प है, वो फर्स्ट नंबर का अनुभव कराता है। महाराष्ट्र में कभी एक संत हुए थे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर के बड़े भाई। उनके जीवन में एक प्रसंग है कि एक दूसरे संत एकनाथ उनको एक बार खत लिखते हैं, परंतु खत जो होता है कोरा कागज, कुछ भी नहीं लिखा होता है उस पे। और दिखाया है कि वो निवृत्तिनाथ है, बार बार खत को पढ़ रहे और आंसू आ रहे हैं, फिर पढ़ रहे और फिर आंसू आ रहे। फिर छोटी जो बहन है उनकी, मुक्ता भाई, उसको पढ़ने के लिए देते हैं, वो भी पढ़ रही है और उसको भी आंसू आ रहे, जबकि लिखा कुछ भी नहीं है। लोग देखकर आश्चर्य, पहले तो वो एकनाथ कुछ लिखा ही नहीं, दूसरा ये और तीसरी ये, सब मौन में चल रहा है। जहां स्नेह है, जहां प्रेम है, जहां संबंध है, जहां हृदय की गहराई से उद्गार निकल रहे हैं, वहां शब्द गौण है, वहां शब्दों का कोई काम नहीं है। बाबा कह रहे हैं शब्द वाणी सेकंड नंबर, स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी और फर्स्ट नंबर का अनुभव कराने वाला है। जब गहराई में अनुभव होता है, अनुभव सारे मौन होते हैं, अनुभव मौन ही होते हैं। शब्दों की भीड़ में, शब्दों के शोरगुल में अनुभव का फूल कभी नहीं खिलता। निस्तब्धता जहां होती है, जहां चेतना शांत हो जाती है, वहां पर अध्यात्म के गहरे से गहरे अनुभव होने लगते हैं, और वो अनुभव अनिर्वचनीय होते हैं, उनको अकथनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता है उनका। बरस जाता है नैनों से वो, बताया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा, ऐसा उसका प्यार के जो अनुभव है, बहुत गहरे तलों के अनुभव है। तो यहां पर बाबा ने तीन उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है लौकिक का, लौकिक मां बाप अपने बच्चों की जैसे पालना करते हैं वैसे बाप दादा बच्चों की पालना करते हैं, परंतु ये जो तीन उदाहरण है वो संसार के उदाहरण है। यहां पर और उस मिलन में एक बहुत बुनियादी अंतर है, वो बुनियादी अंतर ये है कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें फरिश्ता आकारी स्वरूप में बाप दादा के पास आना पड़ेगा, बाहर के जो तीन है उसमें जरूरत नहीं है। जैसे माता पिता बच्चों की पालना करते हैं, जैसे मधुबन में कोई आता है तो उनकी खातरी होती है, जैसे साकार में ब्रह्मा थे तो उन्होंने खातरी की थी, ऐसे ये तीन उदाहरण दिए थे। पहले उदाहरण की तरफ आते हैं, माँ बाप लौकिक माँ बाप अपने बच्चों की कैसी पालना करते हैं, क्या करते हैं? सब माताएं बैठी है, पता है सबको, क्या करते हो अपने बच्चों के लिए? स्नेह देते हो और क्या करते हो? अच्छी डाइट, बाबा ने कहा ना अच्छी चीज उनको खिलाते हैं तो अच्छी डाइट देते हैं, और क्या करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कैसी पालना करते हैं? बाबा ने नहीं, आज लौकिक का उदाहरण, लौकिक में बताओ क्या पालना करते हैं? ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, खाने का हो गया, दूसरा बताओ, मालिश विलिश और क्या करते हैं? अच्छे संस्कार देते हैं, और क्या करते हैं? खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, शिक्षा देते हैं, और क्या करते हैं? प्यार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, और क्या करते हैं? घुमाने ले जाते हैं, और क्या करते हैं? एक्सरसाइज कराते हैं, और अच्छी शिक्षा है, संस्कार, तो ये सारी चीजें। तो बाबा ने उदाहरण दिया है जैसे लौकिक माता पिता अपने बच्चों की पालना करते हैं, वैसे यहां पर माता पिता कहो या बाप दादा कहो या ब्रह्मा मां कहो, रूहानी ममता से पालना करते हैं। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया मधुबन में, मधुबन में जब आते हैं तो यहां खातरी होती है, तो अब बताओ मधुबन में कौन कौन सी खातरी होती है? मधुबन में कौन सी खातरी होती है वो बताना है। मधुबन की खातरी क्या क्या है? सबसे पहला तो ब्रह्मा भोजन, नहीं उससे भी पहले आते ही क्या, आते ही सबसे पहले क्या, आवास निवास, सबसे पहले तो सबसे पहली खातरी तो वो है, फिर नेक्स्ट खातरी, फिर भोजन, फिर टोली, फिर चौथी सौगात, वो लास्ट में, उसके पहले बीच का बताओ क्या, क्लासेस, मधुबन में भट्टी, मधुबन में कॉन्फ्रेंस, मधुबन में शिविर, मधुबन का वायुमंडल, मधुबन का आंगन, मधुबन की चार धाम, और मधुबन की कौन सी पालना है, ज्ञान योग की पालना, हाँ और क्लासेस में आ गया वो, मधुबन की पालना बताओ मधुबन की और कौन सी पालना है? बाबा कहते हैं जैसे मधुबन में कोई आता है, ग्रुप आते हैं, तो विशेष उनको भोजन में ये वस्तु वो वस्तु दी जाती है। और दूसरे उदाहरण, पवित्र पवित्र आत्माओं का संग, यह होली हंसों का संग, संसार में ऐसा कहीं संग तुम्हें मिलेगा नहीं, ये एक किला है, यहां पर कोई विकर्म नहीं हो सकता है, ये किला है, यहां जैसे ही आत्मा आ जाती है, यदि बाहर विकारी संकल्प हो सकते हैं, बाहर स्थिति अप डाउन हो सकती है, पर जैसे बाहर से आत्मा यहां आ जाती है, इस संकल्प से आना कि मैं एक अभेद किले में प्रवेश कर रही हूं, यहां जो भी आएगी उसकी स्थिति ऊपर चली जाएगी। और बताओ मधुबन की पालना, वायुमंडल हो गया, और दादियों का संग, और रूहानी प्रेम, और सेवा का भाग्य, ये तो बता नहीं रहे मधुबन में, ये भी तो एक रीति से पालना ही, हम अपना भाग्य बना रहे, ये भी हमें पालना मिल रही है, और महान आत्माओं के लिए भोजन बनाना साधारण बात है, और धारणा की पालना, और यातायात ट्रांसपोर्ट खोया पाया विभाग, और एक 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 डिपार्टमेंट चालू करो अभी साउंड पीस पार्क, मधुबन के जितने सारे ये है, यहाँ पर बाबा डिस्पेंसरी भी है, बीमार होते हो तो क्या करते हो, दवाई लेते हो ना, तो ये भी तो पालना है कि नहीं। और इधर आ गए डॉक्टर जी और बताओ, क्लासेस हो गया, बार बार वही नहीं, क्या ज्ञान और गुण और शक्तियां मिलती, और क्या मिलता है इधर, गर्म पानी ठंडा पानी। हाँ ये तो प्रैक्टिकल पालना है, संसार में जाओ कहीं गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म लिखा रहता है हॉट पर आता ठंडा है तो दूध, दूध की पालना क्या कहते हैं, उठाने आते हैं भगवान आते हैं, सबसे पहले तो प्रभु मिलन का भाग्य, प्रभु मिलन भगवान यहाँ पर रखते ही कदम जहाँ पर मिल जाते प्रभु वहां पर हो जाता, जहाँ मिलन वो है प्यारा प्यारा मधुबन। तो ये मधुबन की ये पालना है। तो ये बाबा ने तीन उदाहरण दिए हैं, अभी आ जाओ मुख्य चार बातें हैं। सबसे पहला तो क्या पालना देते हैं, घी। ब्रह्मा बाब माँ क्या करती थी, घी, उधर घी खिलाते थे, अभी बाबा सूक्ष्म शक्तियों का घी खिलाते हैं, पहला। दूसरा एक्सरसाइज, उधर एक्सरसाइज कराते थे साकार में, अभी अभ्यास, साकारी आकारी निराकारी दौड़ रेस। तीसरा सैर एक्सकर्शन, उसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो विमान कौन सा है, बुद्धि का विमान, उसमें कैसा रहना चाहिए ये विमान, पेट्रोल नहीं पूछ रहे विमान पूछ रहे, विमान कैसा रहना चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए विमान। पहले तो बुद्धि का विमान वो कैसा रहना चाहिए, एवर रेडी। स्विच कौन सा है, संकल्प रूपी स्विच, ऐसा ना हो कि हम जाए और बीच में से वापस आ जाए, वो पेट्रोल के लिए कहा। तो पेट्रोल कौन सा होना चाहिए, डबल रिफाइंड एलपीजी, वो फ्यूल जेट ऑयल होता है, उसको क्रूड ऑयल नहीं चाहिए, रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, वो भी डबल। डबल अर्थात दो नशे, पहला नशा निराकारी, मैं आत्मा हूं बाप का बच्चा हूं, परंतु ये एक ही संबंध में नहीं रहना है, ये प्रवृत्ति मार्ग पवित्र मार्ग बाबा ने कहा। दूसरा नशा कौन सा है, सर्व संबंधों का चलते फिरते अनुभव। ये दो नशा अर्थात क्या है, डबल रिफाइंड पेट्रोल, बुद्धि रूपी प्लेन एवर रेडी, और तीसरा संकल्प रूपी स्विच। और कहां पहुंच जाओ इससे, वतन में पहुंच जाओ, सागर के किनारे, वो जो सागर है वहां पे, वहां मिट्टी का किनारा होता है, वहां नहीं, ज्ञान सागर के किनारे पर पहुंच जाओ। वहां पर क्या करना है और क्या क्या मिलेगा तुमको, सूरज की किरणें, चांद की चांदनी। लास्ट संडे की मुरली याद है ना, कहां मिलन मनाया था बाबा ने, पहाड़ी थी ऊंची स्थिति की, चांदनी रात थी कौन सी, शीतलता की, और आशिक और माशुक थे सागर का कंठा था, गीत था, संबंध थे, हाँ साज। तो ऐसा वो मिलन था लास्ट संडे की मुरली। अभी क्या कह रहे हैं, सूरज की किरणें, चांद की चांदनी, खेलकूद और पिकनिक, वन क्रीड़ा पिकनिक। तो रोज ये सैर करनी है, रूहानी सैर करनी है, बाबा के साथ उड़ जाना, पहुंच जाना, परंतु वो नशा भी उतना सूक्ष्म चाहिए। केवल एक ही संबंध नहीं कि वो बाप है और मैं उसका बच्चा हूं, नए नए संबंध, हर दिन नए नए संबंध, वो हमारा अंग रक्षक है, ये संबंध, नया संबंध। किसी क्लास में 108 संबंध की माला हमने जपी थी परंतु बीच बीच में जपते रहना है नए नए संबंधों से, नहीं तो एक ही संबंध, एक ही शब्द, एक ही वाक्य बोर हो जाता है। नए नए संबंधों से उसको याद करना है, नए नए, जो कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा संबंध, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आर्थिक सलाहकार, सलाह देने वाला, अलग अलग संबंधों से उसको याद करना है। तो यहां पर ब्रह्मा वहां क्या करते हैं, पालना करते हैं शक्तियों से। पहले नुक्ता चीनी करते थे, अब चौप चीनी खाते हैं। तो पालना लेने की भी तो पात्र हम चाहिए, उसके लिए बाबा ने कहा, आह्वान तो बाबा करते हैं परंतु कैसे आना चाहिए, किस रूप में, आकारी फरिश्ता स्वरूप में आ जाओ तो शक्तियां मिलेगी, सूक्ष्म शक्तियां मिलेगी, आत्मा में भर जाएगी, पावर भर जाएगी, और फिर परिस्थितियों को फेस करने की पावर आ जाएगी। इस मुरली में बाबा ने दो वरदान दिए, पहली मुरली में एक वरदान दिया और दूसरी मुरली में एक वरदान दिया। पहली मुरली में कौन सा वरदान दिया, विजय का वरदान दिया, खुद विजयी हो और दूसरों को भी विजयी बनाओ। कितना अच्छा वरदान है कि भगवान ने स्वयं विजय का वरदान दे दिया है। जो कमजोरी छूट नहीं रही है, जो वीकनेस, जो कमजोरी, जो दुर्गुण, जो अवगुण छूट नहीं रहा है, अब आज वरदान मिला है, छूट जाओगे उससे। दूसरी मुरली में वरदान कौन सा दिया? वो तो सहज योगी बनने की युक्तियां बताई, युक्ति है नशे में रहना। वरदान कौन सा दिया? वरदान कौन सा दिया? वरदान, वरदान बढ़ते रहो, जीते रहो और बढ़ते रहो, मर नहीं जाना इस मार्ग में, इस मार्ग में मर नहीं जाना, पुरुषार्थ से भी मरना नहीं, तीव्र पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। हिगेल नाम का कोई एक दार्शनिक था, उससे उसके शिष्यों ने पूछा था अध्यात्म क्या है, उसने एक शब्द में कहा था, सूफी संत, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, रुकना नहीं है। थोड़े बहुत अनुभव हो गए, आंसू विसू आ गए थोड़े से बाबा के प्यार में, और ये समझ लेना कि हमने बहुत उन्नति कर ली, और आगे और आगे। एक मुरली ली, उस पर थोड़ा बहुत चिंतन कर लिया और बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो गया, रुकना नहीं है। रूहानी लालच चाहिए, आध्यात्मिक लालच, स्पिरिचुअल ग्लटनी। ग्लटन एक शब्द है अंग्रेजी में, ग्लटन वो व्यक्ति होता है जो खाते ही रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, उसका पेट ही नहीं भरता है, ग्लटन कहते हैं उसे। तो यहां पर स्पिरिचुअल ग्लटनी चाहिए, खाते रहो, क्या खाऊं और क्या नहीं, क्या खाऊं और क्या नहीं, किस मुरली को पढ़ूं और कौन सी मुरली कितनी जल्दी अंदर धारण करूं, कितना सारा खजाना है यहां पर, परंतु हम ले कर रहे हैं। तो ये उदाहरण बाबा ने कितना सुंदर, देखो कितने अच्छा, कहां से चालू की मुरली, बगीचे से चालू की, महिमा की बात में, और फिर बाद में ये पालना की बात है। संसार के उदाहरण दे रहे, लौकिक माँ बाप का उदाहरण, मधुबन का उदाहरण, ब्रह्मा माँ का उदाहरण, और फिर ये कितनी अच्छी ड्रिल, कितनी अच्छी सैर, साकारी आकारी निराकारी। तो इस तरह से मुरली को जिन्होंने नहीं पढ़ी है फिर से जाके पढ़ना है, फिर से वो वाक्य कल की साकार मुरली का फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कितनी लगन होनी चाहिए, दिन रात बत्तियां जगाकर, मर झुर कर, खाना भी न खाकर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। ऐसे हम लगे हैं, स्वयं से पूछना है। ऐसे चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को ऐसे याद और सेवा की धुन में रहने वाले बच्चों को ऐसे अविनाशी लगन में रहने वाले बच्चों को ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निमित्त आत्माओं को याद का, सेवा का और प्यार का रिटर्न में बाप दादा अविनाशी याद देते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।